हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की जरा जोरदार तालियां दे यीशु के जलाल के लिए। आए हम सब खुदावंद अपने खुदा के जुड़ चुके और उसके कलाम के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, क्योंकि उसका कलाम हम सब के कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। जैसे हमने अभी गाया, तेरा कलाम जमाने में ऐ खुदावंदा असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। खुदावंद का कलाम बहुत से मुख्तलिफ रूपों में इस जमीन पर काम करता है। खुदा का कलाम बहुत से तरीकों से बने इंसान की रहनुमाई करता है। सो आए हम दुआ करें कि खुदा खुदा आज का कलाम जिस रूप में भी, आपकी सूरत में, मलामत की सूरत में, हौसला अफजाई की सूरत में, धीमी आवाज की सूरत में, या फिर हमारी जिंदगी में एक मकाशवा की सूरत में जरूरत है, खुदावंद खुदा उस कलाम के वसीला से क्या करे, हम सबको रूहानी तरक्की बख्शे। हम सब खुदा के जुड़ झुकेंगे और दुआ करेंगे। खुदा बाप तेरा शुक्र हो आज की सुबह के लिए, तेरे नाम की तारीफ हो। खुदावंद तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। खुदावंद खुदा तमाम कलीसिया को तेरे सामने लाता हूँ खुदावंद, जो बेदार हैं उनके लिए, जो बेदार नहीं उनके लिए भी खुदावंद तेरी हिकमत और दनाई मांगता हूँ। और खुदावंद खुदा तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए कि जैसे तू दुनिया में हम सबको तलाश करने के लिए निकला और तूने खुदावंद खुदा वो खजाना देखा जो इस जमीन पर खुदावंद खुदा जिसकी कीमत बहुत ज्यादा थी, और तूने उस बंदे की तरह सब कुछ बेच बाच कर खुदावंद खुदा वो जमीन खरीद ली ताकि उस खजाने को हासिल कर सकें, और खुदावंद वो खजाना तूने बनी इंसान को जाना। आज की सुबह हम सब के दिलों की आंखों को रोशन कर ताकि तेरे कलाम को सुनकर उसमें से बरकत, जिंदगी, रहनुमाई, हौसला अफजाई पाने वाले बने, यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन। जो बाइबल मुकद्दस लेकर आए हैं वो मेरे साथ निकालें नए अहदनामा में से, लूका तबीब की मार्फत लिखी गई यीशु अल मसीह की इंजील, उसका 15 बाप, हम उसकी 8वीं आय से 10वीं आय तक पढ़ेंगे। और यहाँ पर हम सीखेंगे गुमशुदा सिक्के या जिसे कहते हैं तिरहुम के बारे में, और यहाँ पर अहमियत को जानेंगे कि खुदा बनी नु इंसान की अहमियत कैसी जानता है, हम उसकी नजर में कितने अहम हैं। आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हम कितने अहम हैं। बहुत देर पहले मैंने ये कहानी सुनी कि एक बस ड्राइवर था, उस बस ड्राइवर के साथ तकरीबन 30-40 लोग बस में बैठे हुए थे, और वो ड्राइविंग जो कर रहा था पहाड़ी इलाका था, एक तरफ पहाड़ के साथ साथ वो ड्राइव कर रहा है, दूसरी तरफ बहुत गहरी खाई है, और क्या है जैसे वो ड्राइव कर रहा है उन तमाम पैसेंजरों को लेकर जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके सफर के दौरान क्या होता है कि वो दूर अपने सफर के दौरान देखता है कि कोई सड़क के बीच मजबूर लाचार पड़ा हुआ है कि वो हिल नहीं सकता, और क्या है जी उसे फैसला करना होगा कि किन को बचाए। अगर वो ब्रेक लगाता है तो गाड़ी घूमकर उस खाई में जा सकती है और सारे के सारे मर जाएंगे, और अगर वो उस शख्स को जिसे वो दूर से देख रहा है उसको गाड़ी से कुचलकर गुजर जाए तो सिर्फ एक ही जान मरेगी, बाकी सब बच जाएंगे। सो ये बंदा दूर गाड़ी चलाते हुए दूर से देख रहा है, अपने जहन में सोच रहा है कि मैं क्या करूं, अगर मैं ब्रेक लगाता हूं तो सारे के सारे खाई में और मैं खुद भी मर जाऊंगा, और अगर मैं इस जो भी चीज मेरे सामने है उसके पाँव ऊपर से गुजर दूं, से कुचल दूं, तो एक ही बंदा या वो चीज मरेगी। जैसे वो ये सोच रहा है, वो सोचते सोचते जिस तरह नजदीक आ रहा है और उसके सामने जो बंदा खड़ा है, जो लाचार खड़ा है, जो क्या है जी शख्सियत है, वो उसका अपना ही बेटा खड़ा है। और इसराइल को फैसला करना है कि अब मैं अपने बेटे को कुचल दूं या फिर इन सारी जानों को जो बस में बैठी है बचा लूं। उस बस ड्राइवर ने फैसला क्या किया? कहानी किस तरह खत्म होती है? कहानी किस तरह खत्म होती है, या हम कहेंगे कि कहानी किस तरह शुरू होती है? उसने तरेग नहीं किया, उसने तमाम लोगों की जान बचाने के लिए उस लड़के को कुचल दिया और सबकी जान बचा ली। ये वाक्या, ये कहानी किसकी है जी? खुदा की है कि खुदा ने पूरी दुनिया को बचाने के लिए अपने बेटे को क्या कर दिया जी? कुर्बान कर दिया। उसने ये नहीं चाहा कि सारी की सारी दुनिया गुनाह में मर जाए, सारे के सारे उस गुनाह की खाई में गिर जाए। उसने क्या किया? उसने कहा मैं अपने बेटे ही को मार डालूंगा ताकि सब बच जाए। इस वाक्या में भी हम पढ़ेंगे ऐसा ही कि गुमशुदा सिक्के में खुदावन यीशु मसीह बात क्या करता है उन फकीरों, फरीसियों से, उस्तादों से जो यीशु मसीह पर बुड़बुड़ाते और उंगली उठाते हैं कि लोग क्यों तेरे पास आते हैं, लोग क्यों आकर क्या करते हैं जी तेरे इर्द गिर्द जमा होते हैं। यीशु मसीह पर अल्जाम क्या है कि वो वसूल लेने वाले और गुनाहगारों के साथ खाता पीता है और फकीर फरीसी इस पर बुड़बुड़ाते हैं और यीशु मसीह उनको ये हकीकत बयान करता है। पहली बात उनसे कहता है कि अगर तुम्हारे पास 100 भेड़े हो और उनमें से एक खो जाए तो तुम किसके पास जाओगे? और यीशु मसीह यहां पर जो 100 भेड़ों की बात कर रहा है वो 99 जो हैं रास्तबाज हैं, जो ईमानदार हैं, जिनको तौबा की जरूरत नहीं, उनके बारे में यीशु मसीह कहता है कि उनको हाजत नहीं, लेकिन जो एक खो गई है वो तौबा की हकदार है, उसे सच्चाई जानने की जरूरत है, उसे ढूंढना लाजमी है। और यीशु मसीह फकीरों फरीसियों से उनका रवैया बयान करता है जो हिजकियल 34वें बाब में खुदा ने हिजकियल से कहा था कि चरवाहों पर अफसोस जो फरवा भेड़ों के पास, चिकनाई वाली भेड़ों के पास, उन्हीं के पास जाते हैं जिनसे उनको फायदा है, लेकिन ना तवाना को और बीमारों को और कुचली हुई को और खोई हुई को, गुमशुदा को कोई तलाश करने ना गया। तो ये सारी बात यीशु मसीह जब कर रहा है और दूसरी मिसाल उनको क्या देता है जो तमसील बयान करता है, वो कहता है 8वीं आयत में, या कौन ऐसी औरत है जिसके पास 10 दिरहम हो और एक हो जाए, वो चराग जलाकर घर में झाड़ू ना दे और जब तक मिल ना जाए कोशिश से ढूंढती ना रहे। यीशु मसीह ने उनको उनके रिवाज के मुताबिक ये सवाल किया क्योंकि यहूदी शादी कस्टम में जो जेवरात दिए जाते थे, उन जेवरात में जैसे आज हम पैसों का हार डालते हैं वैसे ही दुल्हन को 10 दिरहम का हार डाला जाता था और ये बहुत अहम ज्वेलरी होती थी। याद है ना आपको जब इब्राहिम ने अपने नौकर को एलियजर को भेजा कि जाकर मेरे बेटे के लिए दुल्हन तलाश करके ला, और उसने उसे क्या दिया? उसने उसको कंगन जिसे कड़े कहते हैं और नथ दी, और ये क्या थी जी? मंगनी या शादी के तय करने के जेवरात थे। सो इस औरत के बाद यीशु मसीह कर रहा है कि उसके पास 10 दिरहम थे और उन 10 दिरहम में से क्या होता है जी? एक दिरहम खो जाता है। उसकी शादी वाले वो ज्वेलरी के क्या है जी, जो नेकलेस है, हार है, जो एक दुल्हन बांधती है, उसका एक दिरहम खो जाता है और उसे उसकी इतनी अहम क्या है जी, अहमियत है कि उसके लिए वो चराग जलाकर झाड़ू फेरती है कि उसे ढूंढे। एक दिरहम की जब हम कदर देखते हैं यहूदी रिवाज के मुताबिक तो एक दिरहम क्या था जी, एक दिन की मजदूरी थी और उस एक दिन की मजदूरी को जो आज के हिसाब से देखें तो उसे क्या कह सकते हैं जी, 25 पैसे। एक दिरहम को किसी के साथ मिला सकते हैं 25 पैसे। कीमत के लिहाज से क्या है जी, हमारे दौर में उसकी कोई कदर कीमत नहीं, सिर्फ 25 पैसे। लेकिन जिस औरत का ये गुम हुआ था वो नहीं चाहती कि उसका खामद या उसके रिश्तेदार कहे कि तू इतनी लापरवाह है कि तेरी शादी का एक ही तोहफा जो तेरे पास है वो भी तू उसकी देखभाल कर ना पाई। इसलिए ये औरत अपनी शादी के इन गहनों को, इन जेवरात को, उनमें से 10 में से एक उसके हो सकता है हार या उसके माथे पर बांधे जाने वाला ये क्या है जी, वो ताज है जिसमें से एक खो गया है और उसको उसकी बहुत फिक्र है, उसकी बहुत कदर है उसकी नजर में। सो यूसुफ से ये बात करते हुए कहता है कि एक औरत जिसके पास 10 दिरहम थे एक खो गया और उसने उसके लिए घर की सफाई करना शुरू कर दी, उसके लिए उसने क्या करना शुरू कर दिया, चिराग जलाकर हर कोने में झाड़ू लगाना शुरू कर दिया ताकि जमा करके देखे कि मेरा दिरहम कहाँ है। और हम जानते हैं कि कहानी किस तरह खत्म होती है, सब मेरे साथ कहें कहानी किस तरह खत्म होती है, कहानी किस तरह खत्म होती है। कभी आपने सोचा कि अगर यीशु मसीह नामुनासिब समझता कि यह जरूरी नहीं कि इस औरत का जिक्र किया जाए, क्योंकि इस औरत का जिक्र करना लाजमी था क्योंकि उसकी फिक्र एक दिरहम के लिए। कल मैं एक तस्वीर देख रहा था, किसी ने तस्वीर भेजी और उस तस्वीर पर उन्होंने लिखा हुआ था कि जिन चीजों की हम जिंदगी में कोई कदर नहीं जानते वो किसी और के लिए जिंदगी बचाने का वसीला बन सकती है। और उस तस्वीर पर पता क्या था, हमारे जो रोजमर्रा के टूटे हुए सैंडल होते हैं ना जो हम पहनते हैं, वो सैंडल पानी का जो सलाब का पानी है उस पर तैर रहे हैं और उस पानी के ऊपर तैरने वाले सैंडल के ऊपर क्या है जी, दो चूजे बैठे हुए हैं। और लिखने वाले ने इस तस्वीर पर क्या लिखा कि जो चीजें हम अपनी जिंदगी में जिनकी कोई कदर नहीं समझते किसी और के लिए जिंदगी बचाने का वसीला बन सकती हैं। और ऐसे ही इस कहानी में एक दिरहम जो 25 पैसे या एक दिन की मजदूरी है, किसी की नजर में उसकी कोई कदर नहीं, किसी की नजर में उसकी कोई अहमियत नहीं, लेकिन यीशु मसीह हमारी अहमियत को याद दिलाने के लिए, बताने के लिए कि हम उसकी नजरों में कितने अहम हैं, वो दुनिया की सबसे कमजोर चीज को लेता है जो किसी की नजर में कोई कदर नहीं रखती लेकिन खुदा की नजर में क्या है जी, कदर रखती है। आप जानते हैं कहानी कैसे खत्म होगी, यीशु मसीह ने कहा जब तक मिल ना जाए कोशिश से ढूंढती ना रहे। और जब मैंने वो तस्वीर देखी कि टूटा हुआ जूता पानी के ऊपर तैर रहा है और उस पर दो मुर्गी के छोटे छोटे चूजे बैठे हुए हैं और पानी पर तैरते हुए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सी चीजें जो हमारी जिंदगी में जिनकी हम कदर नहीं करते किसी और की जिंदगी बचाने का वसीला बन सकते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें कि कोई भी चीज खुदा ने जो बनाई है बेकार नहीं बनाई, उसका कोई ना कोई मकसद है। नौवीं आयत में क्या लिखा है, यीशु मसीह ने कहा उन सबको जैसे आप मुझे सुन रहे हैं सारे, उनकी आंखें यीशु पर लगी हुई थी, उनके कान यीशु की तरफ लगे हुए थे, वो सब इंतजार कर रहे थे कि अब ये क्या कहेगा, अब इसके मुंह से क्या निकलेगा, ये क्या हमें बताने वाला है। सारे गौर से सुन रहे हैं, सारे यीशु की तरफ देख रहे हैं और यीशु मसीह कहानी बयान करते हुए कहता है और जब मिल जाए तो अपने दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाकर ना कहे कि मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मेरा खोया हुआ दिरहम मिल गया है। कभी आपने सोचा कि एक दिरहम जो खो गया था उसकी खुशी में कितनी बड़ी दावत की? एक दिरहम जिसकी कोई भी इतनी कीमत नहीं लेकिन उसके नजदीक उसकी बहुत अहमियत थी। आज हमारे सामने एक रुपए की कोई अहमियत नहीं अगर हमारे पास हो तो, लेकिन सवाल है अगर हमारे पास एक रुपया ना हो तो हम उसकी कितनी अहमियत को जानेंगे। यहां पर इस औरत को बयान करते हुए खुदावंद खुदा अपने दिल का इजहार कर रहा है कि मेरे इस आने इस दुनिया में आने का हकीकी मकसद क्या है, कि तुम्हारे बगैर मेरी कायनात, तुम्हारे बगैर मेरी बादशाही, तुम्हारे बगैर जो मैंने सब कुछ तैयार किया है वो क्या है जी, मुकम्मल नहीं है। इसलिए तुम्हारी कदर बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा, हर वो काम करने को तैयार हूं। जैसे इस औरत ने झाड़ू लगाना शुरू किया, दिया जलाकर हर तरह की उसने सफाई करना शुरू की ताकि उस एक खोए हुए दिरहम को ढूंढ सके। ठीक जैसे बागे अदन में आदम और हवा खुदा से छुपे हुए हैं और खुदा जो दूर है उनको ढूंढता हुआ आता है और उससे ये सवाल करता है, ऐ आदम तू कहां है? क्योंकि खुदा उस रिश्ते का क्या है जी, तलबगार है जिसके लिए उसने उसे बनाया था। तो यहां पर भी जब वो मिल जाए अपने पड़ोसियों और दोस्तों को बुलाकर ना कहे कि मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मेरा खोया हुआ दिरहम मिल गया। अगर किसी को चाय पर भी बुलाया जाए तो हो सकता है कि उसके चार पांच दिरहम लग गए हों एक दिरहम की खुशी करने में। यह तस्वीर है इंसान की खुदा की नजर में, कि दुनिया दुनिया के लोग और तारीकी के हाकम तुम्हारी कदर कुछ नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हारी कदर तुम्हारी अहमियत को समझता हूं क्योंकि मैंने तुम्हें अपने सूरत पर अपनी शबी पर अपनी जात के नक्स पर बनाया है, इसलिए तुम्हारी कदर बहुत ज्यादा है। और क्या लिखा है, बस मैं तुमसे कहता हूं इसी तरह एक तौबा करने वाले के बायस खुदा के फरिश्तों के सामने क्या होती है जी, खुशी होती है। यहां पर लिखा है खुदा के फरिश्तों के सामने। सो सवाल उठता है अगर खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी हो रही है तो ये खुशी करने वाला कौन है? क्या फरिश्ते हैं या खुदा खुद है जो इतना खुश होता है जब कोई तौबा करता है? तो फरिश्ते खुदा के हुजूर खुदा की खुशी को देखकर क्या करते हैं, हैरान होते हैं, परेशान होते हैं कि खुदा जो सब चीजों का मालिक और खालिक है, हर चीज पर उसका इख्तियार है, वो कितना खुश है। जरा दोबारा इस आयत को पढ़े सब मिलकर, मैं तुमसे कहता हूं, जागो मसीरे प्यारो, जागो, जरा आवाज आनी चाहिए, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी तरह एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बायस खुदा के फरिश्तों के सामने, अगर मैं आपके सामने कुछ करूं तो आपको उसका पता चलेगा कि मैंने कुछ किया है, ऐसे ही ना जी। तो इससे सीखने को क्या मिलता है, ये खुशी करने वाला कौन है? आसमानी बाप है जो आगे चलकर हम देखेंगे वो अपने नौकरों को कहता है, बैल लाओ, अंगूठी लाओ, जूता लाओ, नई पोशाक लेकर आओ, सब लोगों को जमा करो, दावत की जाए क्योंकि जो खोया हुआ था वो मिल गया है। इसी तरह आपकी और मेरी और दुनिया के हर शख्स की अहमियत उसकी नजर में बहुत ज्यादा है। हमारी नजर में, हमारी नजर में एक दूसरे की अहमियत बहुत दफा हम नहीं समझते। और छड़ो परे, ये कौन सा मेरा भाई है, ये कौन सा मेरे चाचे का मुंडा है, ये कौन सा मेरा अपना रिश्तेदार है, ये कौन सा मेरा अपना है, मैं क्यों इसकी फिक्र करूं, इसकी जरूरतें हैं ये खुद पूरी करे। ये है इंसानी सोच और रवैया, इंसानों के सामने इंसान की कदर। कब जब इंसान इंसानी सोच से सोचता है, लेकिन जब इंसान खुदा की सोच से सोचता है, जैसे इस वाक्या में है, फकी फरीसी इस बात को अहम नहीं समझते कि गुनाहगार ठुकराए हुए मजलूम क्या करें जी निजात पाए, लेकिन यीशु मसीह अपने उस पहले पैगाम को पूरा कर रहा है जो उसने लूका की इंजील 4 बाब में बियाबान से आने के बाद किया। और वो पैगाम क्या था, खुदावंद का रूह मुझ पर है, उसने मुझे इसलिए मसा किया कि गरीबों को खुशखबरी, अंधों को बनाई, कुचले हुओं को रहाई और तमाम कैदियों को आजाद करूं और उन सबको खुदा के साले मकबूल की क्या करूं जी मुनादी करूं कि खुदावंद खुदा ने मुझे किस लिए भेजा है। सो जब हम इंसान होते हैं इंसान की तरह सोचेंगे तो हम फकीरों फरीसियों की तरह कहेंगे। इबादत कराने की जरूरत नहीं है, किसी की मदद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उन्हीं के पास जाने की जरूरत है जिनके हमें हदिया मिलेगा। किसी गरीब के घर जाने की जरूरत नहीं है, किसी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है जब हम इंसानी सोच सोचेंगे। लेकिन जब हम यीशु की तरह सोचेंगे तो यीशु हमसे हम यही सवाल करेंगे, खोई हुई भेड़, खोया हुआ सिक्का, उसकी कितनी अहमियत है। और उसके लिए आपको मैं बता देता हूं कि उसकी कितनी अहमियत है। 100 रुपए में से अगर 1 रुपया निकाल दें तो क्या वो 100 रुपया बनेगा? उसे 99 ही कहेंगे, 100 नहीं कहेंगे, चाहे कितना जोर मर्जी लगा लें, चाहे दुनिया का कोई कितना ताकतवर बंदा हो जाए, वो 99 पैसे को 100 पैसा नहीं कह सकता, क्योंकि उसमें से 1 पैसा उसमें नहीं है। और 1 पैसा ही डलते वो 99 पैसे क्या हो जाएंगे जी, 100 हो जाएंगे। ये है एक सिक्के की कदर। वैसे ही एक जान जो तौबा करती है उसकी कदर इतनी ज्यादा है। आज हमें इससे क्या सीखने को मिलता है, हम किस तरह सोचते हैं, इंसानों की तरह जैसे सैमुएल ने कहा कि उसका कद बड़ा है, हो सकता है खुदा ये हो, खुदावंद खुदा ये हो, लेकिन खुदा ने कहा कि सैमुएल तू तो इंसान होते हुए इंसानों की तरह देखता और सोचता है, लेकिन मैं खुदा दिलों पर नजर करता हूं। और यहां पर ये खोई हुई भेड़ पता नहीं कितनी मुद्दत से मुंतजर है कि उसे निजात दी जाए। So, किस तरह सोचना है, इंसानों की तरह या फिर यीशु की तरह? जवाब दे, किसकी तरह सोचना चाहिए, यीशु की तरह या इंसानों की तरह? आवाज नहीं आई, किसकी तरह सोचना चाहिए, किसकी तरह, किसकी तरह? क्योंकि यीशु हम में रहता है। एक दूसरे की कदर करेंगे। यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ तुम इन छोटों से करते हो किसके साथ करते हो जी, मेरे साथ। अगर किसी को एक प्याला पानी पिलाते हो तो किसको पिलाते हो जी, मुझे पिलाते हो। अगर किसी नंगे, किसी भूखे, किसी लाचार या किसी मजबूर की मदद करते हो तो किसकी करते हो, मेरी करते हो। यीशु मसीह में हमारी अहमियत बहुत ज्यादा है और खुदा खुद खुशी करता है। और फरिश्तों के सामने क्या होती है जी, ये खुशी होती है कि खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदस, हमें नहीं पता कि वो झूमते हैं, रक्स करते हैं, नारे लगाते हैं कि तमाम फरिश्तों के सामने, खुदा के फरिश्तों के सामने क्या होती है जी, खुशी होती है। स्वयं खुदा के जुड़ चुके हैं और इस बात पर गौर करें कि हमने किसकी तरह सोचना है, यीशु की तरह, इंसानों की तरह नहीं। और हमारी सोच आएगी, अपना फायदा ढूंढ लें, अपनी मर्जी कर लें, वो छोड़ो परे, कलाम याद आएगा या हम भूल जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह हमें फिर धीमी आवाज से कहेगा, खोया हुआ सिक्का खोया हुआ फिर हम। खुदा बाप तेरा शुक्र करता हूँ आज के कलाम के लिए, एक एक जिंदगी को बरकत दे आज का कलाम सबके लिए। खुदा खुदा भाई से बरकत हो, कोई भी जिंदगी खुदा खुदा खाली ना जाए, तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए, हम सब कम होते जाए, तू बढ़ता जाए, तेरे नाम की तारीफ हो। ये सब कुछ मांगता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन।